ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है ऑपरेशन सिंदूर पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार केवी प्रसाद।
दिस इज आकाशवाणी। नाउ वी ब्रिंग यू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन ऑपरेशन सिंदूर। द पार्टिसिपेंट्स आर अशोक सज्जनहार, फॉर्मर एम्बेसडर, एंड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एनालिस्ट। मॉडरेटर इज केवी प्रसाद, जर्नलिस्ट।
Good evening, listeners. This morning, India woke up to the news that its military carried 9 precise strikes across the border and demolishing and targeting terror camps across in Pakistan. Of this, 6 were in Pak-occupied Jammu and Kashmir and 3 in the Pakistan. We have with us General Kulkarni to give us a first assessment as to how he sees this entire operation and present to us the broad overview.
Thank you very much. First and foremost, Operation Sindoor was decided with the purpose that under all circumstances the military installations will not be hit, and neither would the civilian structures, or no damage to the civilian property. With that as a backdrop, Operation Sindhu was with a view to avenge the death or the killings of 26 innocent people at Pahalgam. And that's where the whole, most of us saw it on the television screens, how the Prime Minister was being briefed, how the Raksha Mantri was briefed, and how the whole operation would be planned. Most of them saw the Chief of Defence Staff, the Chief of the Army Staff, Chief of the Air Staff, Chief of the Naval Staff, all of them briefing the Prime Minister. And one didn't know, patience probably was running off of the people. They thought that, yes, non-kinetic measures had been taken. You had the Indus Water Treaty, you had the persona non grata, the military attaches done. They were told to leave India, Atari border closed, all others, visas closed, import, export, all shut, everything all fine. But people were wanting a kinetic step to be taken with a view to ensure that Pakistan must be taught a lesson. Pakistan needs now to be told in no uncertain terms that they cannot use terrorism as an instrument of state policy.
We welcome Ambassador Sajjanhar to understand it from his viewpoint as a diplomat as to how this event, which over the last 14 days we've been seeing a lot of back and forth, phone lines working between countries across. Ambassador Sajjanhar, if you could take a broad overview as to how the world is today looking at what happened, the early morning strikes that India carried across in Pakistan and Pak-occupied Jammu and Kashmir.
Yeah, thank you very much for having me on the show. You know, you first referred to the Pahalgam attacks that took place on the 22nd April. I think by and large, although the world sort of, you know, had understanding and sympathy as far as India's position is concerned, that, you know, this is a brutal attack, this is a vicious attack, dastardly attack on innocent people, you know, civilians who had nothing to do with this, and on the basis of their religion that they were killed. So India had full right to avenge this action that had been taken by the terrorists. But still, as far as India and Pakistan are concerned, you know, there are so many wars that are going on already, Russia-Ukraine, between Israel and Hamas, and in the West Asian sector. They did not want that, you know, any action that might be taken by India should, you know, expand into a regional conflict or into an all-out war or a broader conflict. So I think that was what the world was counseling both sides, that you exercise restraint. And, of course, even as far as the statement that was issued by the United Nations on the 25th of April, that you know, that India has the full right to, and there is a need to hold you know, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of, you know, of terrorism, they should be held accountable and they should be brought to justice. But still, the world was counseling restraint to both sides. And as far as India is concerned, India had made it very clear that, you know, it had taken action on the next day itself, on the 23rd of April, after the Cabinet Committee on Security. And India had said, Prime Minister Modi and all the senior leaders had said very categorically that justice will be served, and those who had committed this attack, they will be made to pay for it. So coming to the action that has been taken today, I think it is very clear India has sent out a message. India has been reaching out to the international community in a very big way. And, you know, during the course of our conversation, we can
Certainly, Ambassador Sajjanar, we'll take it forward from there. And मैं श्रोताओं को चाहूंगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो पूरे आज इस पे अपनी बात रखी वो सुने.
हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है. भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है. आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है.
जनरल कुलकर्णी, अभी रक्षा मंत्री की जो बात से कही उन्होंने आज सुबह, तो पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि आपने भी बात कही, सज्जनार ने भी बात की कि टारगेटिंग हुई है और इसका कोशिश पूरी यही थी कि इसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो और कोई मिलिट्री भी कोई. तो जो सबसे बड़ी बात है कि जिसे कहते हैं कि मिलिट्री टर्म्स में जो आगे एस्केलेशन के लिए, और ये बात हमारे बाद में चलेंगे, तो इसके पर थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे.
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस तरह के जब कोई भी टारगेट्स को लॉन्च करते हैं तो कई बार गलती भी हो जाती है और गलती में कोलैटरल डैमेज होने का खतरा होता है. इसके अलावा कई बार जो जहां हो रहा है, जिस मकसद से हो रहा है, और एस्केलेशन लैडर में हम उसको थ्रेशोल्ड के नीचे रखने की कोशिश करते हैं कि मकसद क्या था. मकसद था दुश्मन को इस बात का एहसास दिलाना, और इसमें दुश्मन कौन है? आतंक के बरखिलाफ ये लड़ाई है. पाकिस्तानियों से हमें कोई लेना देना नहीं. अब इट इज बाय कोइंसिडेंस ये आतंकी जो है वो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं, वो बात अलग है, पर आतंकियों को मारना है. और उस सोर्स ऑफ टेरर को अगर हमने बर्बाद करना है तो उसको कैसे करना है, तो इसकी काफी स्टडी, काफी टाइम से देखा गया कि किस तरह के कहां कहां उसके अड्डे हैं आतंकवादियों के, और उन अड्डों को खासकर मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी, ये जो जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के, और फिर उसके बाद उनको किस तरीके से लेना, और हमारे पास किस प्रकार के हथियार हैं. अगर हम एलओसी पार नहीं करते हैं तो क्या हम उनको ठोक सकते हैं वो, और कहां तक और कितना हम उसके ऊपर उस टारगेट्स को बर्बाद कर सकते हैं, वो देख करके हमने यकीन किया कि इन सब में ऐसे 9 टारगेट्स चुने गए जिनको हमने अपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से बर्बाद करना है.
एंड दिस, इफ यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इट्स द प्रिसिशन स्ट्राइक्स इज समथिंग वेरी वेरी केयरफुली प्लान्ड. And also making sure that you said there's no collateral damage and the risks are very high. So that requires tremendous amount of planning, and as you whatever reports initially was, that is a tri-services work which went into it.
Absolutely. Because after the post of the CDS, probably this must be one of those real, I would say, an operation in which all the three services had to coordinate, have to synergize, the jointmanship had to be achieved, and then the execution of the task and what the Prime Minister had in mind. That is very important. After all, the execution was done on behalf of the government of India, which the Prime Minister was, and he had stated in no uncertain terms that they would take revenge the loss at Pahalgam, in which 26 innocent people had been killed, but he had laid down certain terms and conditions, and within those terms and conditions, an operation had to be launched. At the same time, messaging had to be done that don't mess around with India.
Before I bring Ambassador Sajjanar, I think we'd like to hear Foreign Secretary Vikram Misri, who addressed the country this morning at the press conference.
आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।
बस सज्जना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आज सुबह भारत की तरफ से पब्लिक किया गया था, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और साथ में सेना के दो जवान ऑफिसर्स थे, तो इससे कोई एक खास एज ए डिप्लोमेट आप कैसे समझते हैं इसको? पूरे विश्व को हमने कौन सा मैसेज दिया?
देखिए, मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है जब ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे किस्से होते हैं। तो एक तो मैं कहूंगा, अपने देश को और देशवासियों को और पूरे विश्व को, जो हमने इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा सिंदूर, वो एक बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही इवोकेटिव है, क्योंकि वहां पर जो भी गए थे, जो भी 26 लोग मारे गए, वो सभी पुरुष थे, सभी युवा थे, कुछ उनके सबके परिवारों के सामने उनको शॉर्ट रेंज पर हेडशॉट वूंड से उनको खत्म किया गया, उनको मारा गया। और ये हमें मालूम है, ये देखिए एक तस्वीर, किसी के हृदय से वो नहीं निकल सकती है, जो जब उन्होंने ये पूरी दुनिया में इसको वो प्रकाशित हुआ, जब लेफ्टिनेंट नरवाल वहां पर बेसरान की मेडो पर वो उनको मार दिया गया था, और उनकी पत्नी जो अभी अभी उनकी शादी हुई थी 16 अप्रैल को उनके पास बैठी है, तो उनकी मांग का सिंदूर पोच दिया गया था। ऐसे बहुत से ऐसे महिलाएं थी जिनका सिंदूर पोचा गया, जिनके बच्चों को मारा गया। तो इसीलिए ये बहुत ही एक जो नाम दिया गया है, कोड नेम दिया गया है, बहुत ही इवोकेटिव है और सभी के दिलों पर इसका अमिट प्रभाव रहा है। और दूसरा मैं कहूंगा, जो हमारी नारी शक्ति को ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है, क्योंकि जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ जो दो हमारे जांबाज अफसर थे, तो एक तो व्योमिका सिंह थी और एक सोफिया कुरेशी थी, दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे विश्व को जो उन्होंने संबोधित किया, पूरे देश को संबोधित किया, जो किस कारण से किस किस टारगेट्स को हमने चुना है, उस किस टारगेट्स को हमने हिट किया है, अटैक किया है, क्या कारण है और किस प्रकार के हमने वहां पर अस्त्रों का प्रयोग किया है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो भारत की नारी शक्ति है वो बहुत ही उजागर है और पूरे न केवल और क्षेत्रों में परंतु रक्षा क्षेत्र में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा इसमें ये कहूंगा, जो एक जो उसमें ऑफिसर थी, वुमेन ऑफिसर, वो सोफिया कुरेशी, वो मुस्लिम वर्ग की है, और जो इनका टेररिस्ट का मकसद यही था, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा किया जाए, इसीलिए उन्होंने वहां पर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा था। तो इससे ये भी एक संदेश देने का प्रयास है, जो भारत में सभी जो वर्ग हैं, सभी जो धर्म हैं, जातियां हैं, सभी मिलजुल कर रहती हैं और सभी को आगे बढ़ने का और ऊंचा उठने का सभी को पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जो ये मैसेजिंग, जो सटल मैसेजिंग है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी और इसका जो नाम दिया गया है उससे भी ये दी गई। और जिस प्रकार से विक्रम मिश्री ने कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने, जो हमारा क्या मकसद था, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो ये हमारा नॉन एस्केलेटरी है, और उसको बाद में हमारे NSA अजीत डोभाल ने भी कहा, जो हमारी तरफ से ये जो एक्शन है वो खत्म हो गया है, अब हम नहीं चाहते जो इसके आगे, क्योंकि हमने जो आतंकियों के विरुद्ध एक्शन लेना था वो हमने ले लिया है। अब
मैं अपने सारे श्रोताओं को,
पाकिस्तान को,
सज्जनार में सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो, आकाशवाणी के स्टूडियो से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक स्पेशल खास परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें एम्बेसडर सज्जनार, भूतपूर्व राजदूत और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, I think probably before we move forward, it will be very good to hear Colonel Sofia Qureshi, the very measured way in which she went and introduced the subject and brought about some kind of a calm in this room.
Indeed, brilliant.
Operation Sindoor, 22 April ko Pahalgam mein hue विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।
Jill Kulkarni, the fact that today of the 9 places, how would you see one of the biggest news that actually came out? One, of course, the Muridke and Bhawalpur. And we've seen public acceptance by the from JEM, Masood Azhar, that 10 members of his family have been wiped out. So that shows the level at which the precision targeting did work, and the cost inflicted on the terror camp and terror related to terror.
Absolutely, Mr. Prasad. You know, first is to be able to gain information, so to have so much of perfect, correct information as to what is happening,
which Colonel Qureshi was mentioning.
And just not that, over the days after the incident, most people thought they would have dispersed, they would not be there, and everybody would have gone. Yes, the top-notch terrorists
may have relocated.
Relocated, probably aware. They may be shifting their bases every 4 hours also to say that they're safe. But notwithstanding, to be able to get the information till the last, because obviously, once the decision has been taken at 1 o'clock, that the thing, and the whole thing is to finish off in the next 25 minutes, so the information has to be perfect till the last, that they knew who's where and how they will be hit. It was a classic precision in which you could hear Masood Azhar virtually weeping as to why is it that he did not die and all his family members have died. So that, I think the messaging was perfect, and it couldn't have been better. And the other, that the place that Modikai, that we were talking about, that's the place where Kasab and Hadley had been trained for. So today you find nothing there, debris. So that is something which the people there will also remember to know, that India has zero tolerance for terror.
And it means what it says, and as Prime Minister has said, to the last place on the earth, we'll keep chasing them. Ambassador Sajjanara, if I bring back the discussion to you, because we've been getting a lot of reports, as we said in the beginning too, international, the External Affairs Minister has been in conversation with several foreign ministers, his counterpart, the US, the UK, Japan. There have been concerns over the issue that India and Pakistan, everybody is talking about, should exercise restraint. How do you see the diplomatic activity? It remains as high as ever. How does it move from where we are?
Yeah, I think that's an excellent question. And we will, you know, as days pass, we'll get to see as to how the other countries are responding. But, you know, as far as India is concerned, you know that the Foreign Secretary had organized a meeting with all the UN members of the Security Council, except for Pakistan, that was not invited. but 14 other members were invited, and Foreign Secretary gave them a briefing about the action that India had taken. And basically, I think the words that he had used, that India's action was measured, and that is very true. It was not sort of, you know, there was no collateral damage, there was no attacks on any of the civilians, there was no attack on any of the military establishments. It was non-escalatory because we were targeting only the terrorist hideouts, the terrorist strongholds, the terrorist camps where the training had taken place. It was proportionate. It was, you know, our people had been killed, innocent people had been killed. And here it was only the terrorists who had been attacked, and it was responsible. So definitely anything that India had done was not to escalate the matters. And this is exactly what, you know, the last time when I was talking, I said this is what the NSA, Mr. Ajit Doval, has also said, that as far as we are concerned, the action is over. It is now up to Pakistan whether it wants to, you know, in a case of misadventurism, it wants to retaliate, it wants to respond, after which India is fully prepared to sort of, you know, move up the escalation ladder. But then we do not wish to do that. We do not wish the issue to be escalated, because we had to serve justice as far as those innocent people who were butchered in a most brutal manner. And that is what we have done. So we will really now have to wait and see as to what Pakistan does. One thing, of course, it has started doing is in terms of the artillery shellings across the line of control. And as a result of which, today we have seen over the last more than 12 hours that this shelling has been going on, that there have been huge casualties that have taken place on the Indian side. And the Indian side is also responding in a proportionate manner and in an effective manner to this cross-border firing that has been taking place, that has been going on.
General Kulkarni, जैसे Ambassador Sajjanar कह रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चूंकि फौज से जुड़े रहे हैं, military matters के आप strategic analysis करते हैं, तो पहले तो दो पहलू हैं. एक, उधर से क्या आप anticipate करते हैं कि वे क्या हो सकता है? क्योंकि हर चीज आपने बात रखी, हालांकि हमने कह दिया हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन अब उनका क्या जवाब है नहीं है, एक तो मिलिट्री कॉन्सेप्ट है. दूसरा, अगर हम देखा जो पिछले 24 घंटे जो उससे कम में एक तरह से फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, तो जिसे आप मिलिट्री टर्म्स में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम पे कहते हैं, तो इन दोनों पहलू पे थोड़ा आप बताएं.
देखिएगा, पहले तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे बता देते हैं कि पाकिस्तान हर हमेशा और अब तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चीन के प्रभाव में है और किस प्रकार से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है, इतना मर गए, इतना ये हो गया, इतना नुकसान पहुंचा है, ये तो नैरेटिव जो पाकिस्तान के हैं, और मीडिया का जमाना है, मोबाइल सबके पास है,
सोशल मीडिया से तुरंत पहुंचाने की कोशिश हो रही है,
और अपने यहां पे भी ऐसे तबके हैं जो इन फॉल्स नैरेटिव्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके साथ दे डोंट चैलेंज जो लिखा है और उसको फॉरवर्ड करने में मस्त रहते हैं और गलत धारणा फैलती है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर हम लोग दो पहलुओं में जाऊंगा, पहले तो एलओसी के ऊपर, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि फायरिंग हुई है, अब एलओसी के ऊपर जब फायरिंग होती है तो हम लोग यकीन करते हैं कि जो वहां पे सिविलियंस रहते हैं उनके लिए बंकर बने हुए हैं और वो उन बंकरों में जाकर के अपना शरण लेते हैं जिससे कम से कम कैजुअलिटीज हो. आपने देखा कि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद काफी वहां पे, और सीज फायर भी हम लोगों दो पहलू थे. सीज फायर का पाकिस्तान को ये फायदा हो रहा था कि वहां से वो ट्रुप्स लिफ्ट करके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जहां पे उनकी जान जा रही थी वो यहां से लिफ्ट करके ले गए. हमें उसका ये
जाफर एक्सप्रेस तो कोई भूल नहीं सकता
करे, पर हमें ये फायदा हुआ कि जो एलओसी के ऊपर जो सिविलियंस लोग रहते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उनकी जान नहीं जाती और उनके घरों के ऊपर और दैट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उस मकसद से हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया कि वो जो है वो आराम से रहे. और अब काफी 10-12 दिनों से लगातार स्मॉल आर्म्स फायर कर रहे थे, और स्मॉल आर्म फायर करते हुए उन्होंने एस्केलेशन लैडर में अब आर्टिलरी फायर शुरू किया, और उस आर्टिलरी फायर शुरू करने के बाद और स्मॉल आर्म्स में बहुत फर्क पड़ता है, और पता नहीं चलता गोले कहां गिरेंगे। इसमें कुछ एक जरूर जाने बच्चों की जाने गई है इस LOC के साथ साथ, तो ये तो जरूर है। और पहले जब दोनों देशों के बीच में जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो DGMO के द्वारा हम लोग बातचीत करके,
दो दिन पहले भी एक खबर आई थी कि DGMO के बीच में कुछ इसी शेलिंग को लेकर कुछ बातचीत,
बिल्कुल, पर उस लेवल पे जनरल पे लेवल पे नहीं, ब्रिगेडियर लेवल पे हमने रखा था, क्योंकि उन्होंने तो पूरे जो एवरीथिंग वाज हेल्ड इन अबेयंस एंड सस्पेंडेड, लेकिन बातचीत होती है, और अगर इस तरह के मनमुटाव होता है या कोई
ऑपरेशन लेवल कमांडर,
ऑपरेशन लेवल वो वही हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इसको वो विश्वास नहीं किया जाता, और यह एक बहुत बड़ी विलंबना है। ये पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और वो कहेगा कुछ, आप जैसे कि सिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल बातें होनी है दोनों देशों के बीच में, आज तक बताए जब उन्होंने अपने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस ले लिए, उसके बाद उसने तो उस सिमला एग्रीमेंट के बारे में ध्यान नहीं दिया, जब तक उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर उनको चाहिए थे तब तक तो वो आगे पीछे कर रहे थे, जब उनको मिल गए उसके बाद सिमला एग्रीमेंट और वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट था वो तो छोड़ दिया। पूरे विश्व भर में गुण गाते रहते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जुगलर वेन है, जबकि पूरा कश्मीर हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तक किया महाराजा हरि सिंह ने, उसके बाद पूरा कश्मीर हमारा है।
एम्बेसडर सज्जनहार, वी बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बीइंग आल्सो पुट बाय पाकिस्तान टू ट्राई एंड इंटरनेशनलाइज एज दे से, बट वेरी रिसेंटली जस्ट अबाउट प्रॉब्ली अ डे it came a cropper at even in USC. Could you just walk us through with this particular aspect and how significant and crucial and important it becomes in international matters?
Yeah, absolutely. I think Pakistan has been trying to internationalize this issue. And you would recall, meaning I could go back even to 2019 when Article 370 was abrogated. And we saw that even that year at the UN General Assembly session, it was Imran Khan who was the Prime Minister and he was addressing the UNGA. And normally all heads of state government are given anything between 10 to 12 minutes of time to address the UNGA. But he kept on going for, I think, more than 45 minutes. He spoke, there was no, conjunction in whatever he said, there was no streamlined movement in his statements, but he kept on speaking about Kashmir, but there were hardly any takers for whatever he said. And we've seen that Pakistan has tried to raise this issue at all meetings of the UN General Assembly, but there have been no other country barring possibly sometimes Turkey and sometimes maybe once or twice Malaysia, but there is no other country that has referred to this. And the whole idea of this Pahalgam massacre also was that it would try to internationalize this issue and bring it again in front of the UN Security Council. It would be able to say that Kashmir, Jammu Kashmir issue is not settled. Whatever India has done in 2019 is illegal. And, that the international community will say that India and Pakistan need to come together, work together to sort out the Kashmir issue. And I think it is in this connection that it sought discussion, private discussion on the issue, on this tensions between India and Pakistan at the UN Security Council. It could do that because it is a non-permanent member of the UNSC, and it was given that opportunity. But rather than getting any strictures passed against India in terms of, or any directions being given to India that it should get together with Pakistan and have bilateral discussions on sorting out the issue. Questions were in fact raised on Pakistan itself in terms of the space that it provides to organizations like Lashkar-e-Taiba and what is the role of the TRF, the resistance front which claimed responsibility for the Pahalgam massacre. So it really was pushed into a corner, and rather than getting any forward movement on issues that it wanted, like on the Indus Water Treaty issue, that India should not stop the supply of water to Pakistan, or its desire that there should be an independent investigation in this whole issue of the Pahalgam massacre. None of these issues were approved by the UN Security Council. And in fact, Pakistan found itself that it was being forced to respond to many questions and many queries from other members of the UN Security Council.
So one should see this as a
failed miserably.
Yeah, one should see this as a victory of a quite diplomatic, you know, success the Indian diplomats have been doing at the international and global level, that at this stage that you could take it forward. And before we take the conversation forward, main chahunga ki hum, kyunki Bharat Sarkar ne kal ek all party meeting bulai hai, to main chahta hu ki vipaksh ke jo neta Lok Sabha mein Rahul Gandhi ne jo is baat kahi, aur uske baad Uttarakhand ke mukhyamantri Pushkar Singh Dhami ne apni taraf se jo baat rakhi, aap sune.
Working committee mein humara discussion hua. Full support to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party. We got a call today, we've been invited to the four party meeting tomorrow.
निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी, और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूत करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है।
जनरल साहब, पुष्कर सिंह धामी जो की एक बॉर्डर स्टेट के हैं, और जहां के एक ऐसा राज्य जो भारतीय फौज को बहुत सारे लोग हमेशा एक सप्लाई लाइन जिसे कहते हैं कि फिर वहां से आते हैं, तो ऐसे में दोनों के बयान सुने, एक तरह से पूरा विपक्ष, पूरा देश एक होके खड़ा इस वक्त। और कल जो है, क्योंकि मीटिंग भी है औपचारिक जो इसमें बातचीत होगी, लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस वक्त इस मामले में तो ये कितना फर्क पड़ता है फौज की जो हम बात करते हैं उसके मनोबल पे, तो पूरा ही पीछे से पता लगता है पूरा राष्ट्र एक होके खड़ा है उनके साथ।
देखिएगा, जो चीफ मिनिस्टर धामी है उनके पिताजी कुमाऊं रेजिमेंट में थे, तो उनका जो नॉर्मल जो सोच है वो एक फौज के वाफिक है और फौज के लिए है, तो दैट कैन बी ग्रांटेड। इस पर कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के रूप में देखते हैं तो वो सफलता तीन कारणों से मिली। एक, दृढ़ जो अपना लीडरशिप थी वो बहुत ही जबरदस्त। दूसरा, प्रोफेशनल अपने जो आर्म फोर्सेस हैं, द प्रोफेशनल, बिल्कुल थर्ड प्रोफेशनल, मतलब पूरा देश उनके ऊपर गर्व कर सकता है, वो उतने प्रोफेशनल
हैं, करता भी है सर,
और बिल्कुल शकिन है, जबरदस्त। और तीसरी बड़ी बात, देश एकत्र, पूरा देश इस मामले में था कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, हमने पाकिस्तान से या आतंकियों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जब तक हम उनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आक्रोश सा था कि हम कब करेंगे। इस ऑपरेशन के बाद आप देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं कि कम से कम हमने बदला तो लिया, और वो बदला बहुत जरूरी था।
Before we move forward, I would think we should listen to Mr. Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra.
भारतीय सेना का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये कह दिया था पहलगाम के हमले के बाद कि इसका करारा जवाब मिलेगा। वो करारा जवाब जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ऐसा करारा जवाब आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने दिया है, और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ खड़ी है।
Ambassador Sajjanar, if I were to bring you to this, in this discussion, one particular aspect that people in India would always like to understand, everybody knows that in Pakistan it is the army which calls the shots, and especially in its relationship with India. Well, there is a Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif. He has made certain statements. So how would you, as a diplomat who has dealt with many of these issues, ticklish issues, how would you like to characterize this particular relationship, which obviously has a larger bearing on the way we do our international affairs with Pakistan?
No, absolutely. I think if you're asking about Pakistan, the system in Pakistan, you know, it appears to be an abnormal country because, you know, if you look at it right from the time that it became independent in 1947, there is not a single government, civilian elected government, that has been able to complete its full tenure of 5 years. Not one in all these more than now about getting on to about 80 years or so. Not one government has been able to complete that. And for, I think, about half the time, the country has been ruled by military dictators. You know, whether we had Pervez Musharraf for such a long time, or before that, General Zia-ul-Haq or Ayub Khan. So many of them. So, you know, the impact of the army on governance in Pakistan has been very outsized. You know, it is said often that there are countries which have armies, but as far as Pakistan is concerned, it is an army which has a country because it is able to rule over the country. Over the last few years, we have seen, of course, that, you know, since global circumstances have changed, so the army does not come and take power directly in its own hands, because it sees that there are more, while it would like to exercise the power and authority, but there are so many challenges and so many problems that it would not like to be seen to be saddled with those problems and challenges and not be able to solve them. So they have been dealing with all these issues from behind the seat of power. So it is a hybrid system in which the real power rests with the army, but of course, as far as the normal official power is concerned, that is with the civilian government. So that is not a very healthy way to conduct you know, governance. And we have found that army has, if it is the nuclear policy of the country, if it is relations with Afghanistan, if it is relations with the United States, all major relationships, as far as Pakistan is concerned, are determined by their army. And of course, relations with India are determined by their army and not by the civilian government.
Yeah,
and that creates very many challenges for
Ambassador
India.
Ambassador Sajjanar, I think General Kulkarni also wants to have a word in this particular aspect.
Mr. Prasad, aapko aashcharya hoga, main agar aapko bataun, teen aise general jo muhajir, Ziaul Haq, Jalandhar, Pervez Musharraf, Chandni Chowk, Munir Jalandhar. One is talking about 1,000 cuts, yet another, yet to ji hamare hero hain. And the third follows both of them more fundamentally and radical, surprising. Tino ki paidaish, tino ke pura roots idhar, muhajir kehlate hain, aur Bharat ke hi barkala baat karte hain, aur ab unka khud ka standing Pakistan mein jo baki log hai Punjabi, jo apne aap ko Arabic samajhte hain, inko kuch bhi nahi samajhte. Ye aaj halat hai Pakistan mein, but they are holier than the cow. They want to prove they are much better than anybody else. Surprising, isn't it?
Well, thank you very much for sharing that information with our listeners. Ambassador Sajjanar, I think what General Saab told us, and you probably are already aware of this, much of it has crosses. But when you deal with these issues on an international level, at the diplomatic level, and you know there is a person in the room who is not present, in terms of relationship with Pakistan, as you just mentioned, the army is there already. So how difficult or how does one negotiate these positions when you are in a diplomatic situation?
Well, the position becomes very challenging because all the people who are there, who are in the room, they do not have any power. They do not have any authority. They are taking instructions and guidance from people who are not in the room. And, you know, so there is nothing that they can commit themselves to. So it becomes very difficult. You know, when Indians go, when we go, we are given a brief, that is cleared by the government, that is cleared by the cabinet, that this is what you have to, and this is the sort of leeway that is available to you to be able to discuss and negotiate and to come to some sort of an agreement. As far as, the Pakistani delegations are concerned, they do not have such authority at all, and they are literally, looking over their shoulders behind to see, to seek instructions from agencies and individuals who are not present there. So that is why, in terms of getting any final decisions on issues which are very significant, which are very important, that becomes very difficult. And even if those who are present in the room, they have agreed to something, it is not known as to how much they will be able to stick to those agreements, how much they will be able to implement those agreements, and whether they will be true to their word or whether they will go back on what they have agreed with you.
Ambassador General, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूँगा आप हमारे श्रोताओं को इतना जरूर बताएं कि भारतीय कूटनीतिक कदम की सफलताएं हम देखी हैं, और लेकिन अब से लेकर जो आने वाले चुनौतियां कहिए या जो परिस्थिति है उससे कैसे डील कर सकते हैं और किस तरह का जो है हमारे जो ताल्लुकात हैं तमाम सारे राष्ट्रों के साथ वो इसमें पहल करने में आसान होगा।
देखिए, मैं ये समझता हूँ जो हमारा पिछले कुछ अगर 10-11 साल में हम देखें तो भारत का जो प्रोफाइल है, इमेज है, भारत का जो रुतबा है पूरी दुनिया में वो काफी ऊंचा हुआ है, वो काफी बड़ा है, क्योंकि हमने जो भी पोजीशंस ली हैं बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशंस ली हैं और अपने राष्ट्रीय हित को आगे ले जाने के लिए ली हैं। तो चाहे आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिएगा, तो हमारे ऊपर पश्चिम की तरफ से कितना दबाव था, जो आप रूस की इस अटैक के लिए निंदा करिए, पर हमने वो सीधे शब्दों में वो नहीं किया। फिर हमारे ऊपर दबाव था जो आप तेल मत लीजिए, वो हमने, क्योंकि हमें अपने लोगों के लिए तेल की जरूरत थी, हमने उसको लिया। तो पूरी दुनिया ये समझती है जो भारत अपने हितों के लिए जो वो ठीक समझता है वो करेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मैं कहूंगा ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे पहले जो हमने 2019 में बालाकोट का पर स्ट्राइक किया था और फिर 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो मैं समझता हूँ तीन संदेश बहुत ठीक तरीके से पूरे विश्व में हमने भेजने में सफल रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के लिए, जो अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला किया जाएगा तो फिर हम उससे ज्यादा बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर, जो भी वहां पर जहां से भी वो उपजा है, जहां से वो पनपा है, हम उसके विरुद्ध वो एक्शन लेंगे। आतंकियों के विरुद्ध, जो अगर आप ये आतंकी हमारे ऊपर ऐसे अटैक करते हैं, चाहे उरी हो और पुलवामा हो, तो अब ये 26-11 वाला सिचुएशन नहीं होने वाला है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और हमारा जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। और तीसरी बात ये है, जो भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पावर बनकर उभरा है, जो हम ऐसे वैसे किसी के, हम सभी से मित्रता चाहते हैं, सभी से अच्छे संबंध चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बहुत पावर है। जी,
आपने बातचीत में शामिल हुए आप और जनरल कुलकर्णी, आप लोगों का धन्यवाद। वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया है। थैंक यू लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस स्पेशल डिस्कशन।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
You were listening to a special program on Operation Sindoor. The participants were Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Lieutenant General Sanjay Kulkarni, defense analyst. Moderator was K.V. Prasad, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.